नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृहमंत्री ने आज गोरीमेदु स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है।
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिश करता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।